आरव और आयु खुराना मेंशन पहुंच गए थे। उन्हें आने में काफी देर हो गई थी। आते ही दोनों सीधे अपने रूम में आए और फ्रेश होने के बाद बेड पर थे। आयु बेड पर आते ही सीधे सोने को हुई कि तभी आरव ने उसे पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। आयु ने आरव की तरफ लाचारी से देखते हुए कहा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, प्लीज सोने दो। अच्छा, तो इसलिए तुम तेज गाड़ी चलाकर घर आई हो? यू आर सो सेल्फिश मिसेस खुराना, आरव ने सिर हिलाकर कहा। उसने आयु के चेहरे की तरफ देखा जो काफी थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा देखने के बाद आरव ने आइज रोल करके कहा, सिर्फ 10 मिनट चाहिए, अब क्या सिर्फ बात करने के लिए भी तुम्हें रिक्वेस्ट करूं? हाँ ठीक है, हर बात पर शिकायत लगाने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले तो मुझे बहुत बार हॉस्पिटल में मिल चुके हो, जिनमें कई बार रात का टाइम भी होता था। तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, आयु ने चिढ़ते हुए कहा। आरव ने इशारे से आयु को अपने करीब आने के लिए कहा तो उसने आरव के सीने पर अपना सिर रख लिया था। आरव धीरे धीरे आयु के बालों को सहला रहा था। 5 मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही सो गए हों। तभी अचानक आरव ने कहा, देखो मैंने तुमसे 10 मिनट ही तो मांगे हैं, उसमें भी तुम सो गई। मैं नहीं सोई हूँ मैं आरव, और सो भी कैसे सकती हूँ? तुमने इतना टाइटली पकड़ रखा है, ऐसा लगता है जैसे दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी, आयु ने जवाब में कहा और फिर अपने सिर ऊपर करके आरव के चेहरे को देखा। आरव ने महसूस किया कि उसने सच में आयु को काफी कसकर पकड़ रखा था। उसने आयु को छोड़ा और अपने ऊपर लेटा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है, अब मुझे तुम्हें अपने करीब रखने के लिए टाइटली होल्ड नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें मेरा चेहरा देखने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। आयु ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसने आरव की तरफ धीरे से कहा, कल मैं बिजी रहने वाली हूँ, मैं घर नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगा, आरव ने प्यार से जवाब दिया, जिस पर आयु ने हामे सिर हिला दिया। उसे आरव के हॉस्पिटल आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर किसी को प्रॉब्लम होने वाली थी तो वो मिस्टर कपूर थे। आरव ने आयु के फॉरहेड पर किस किया, फिर उसको अपने ऊपर से नीचे उतारा और उसे कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया। फिर आरव ने आयु का हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, चलो सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और गुड नाइट विश किया। आरव ने अपना हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और फिर अचानक उसने आयु को वापस अपने पास खींच लिया। आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी और उसने आयु के कान के पास धीरे से कहा, तुम्हें क्या पता लगा था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सोने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें टाइम दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूर रहने दूंगा। अब मैं तुम्हें टाइटली पकड़ूं या धीरे से, तुम्हें एडजस्ट करना होगा मिसेस खुराना, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं लगा था मिस्टर खुराना, जानती हूँ अच्छे से कि तुम एडजस्ट करने वालों में से नहीं हो, आयु ने आंखें बंद करके जवाब दिया और फिर उसी पोजीशन में सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह आयु तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। आज उन्हें एक दिन में 2 सर्जरी करनी थी और दोनों ही मेजर सर्जरी थी जिनमें काफी टाइम लगना था। डॉक्टर सिद्धि वापस आ चुकी थी। मीटिंग रूम में आयान अपनी टीम के साथ सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहा था। सर्जरी प्लान करने के बाद सभी वहां से अपने अपने केबिन में जाने लगे। तभी आयान ने आयु की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर ओबेरॉय, आप यहीं पर रुकें, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन अब मुझे आपसे कोई पर्सनल बात नहीं करनी है डॉक्टर सिंघानिया, आप तो विश्वास के लायक ही नहीं हो, क्या पता मेरी कौन सी बात जाकर अपने बड़े भाई को बता दोगे, आयु ने टॉन्टिंग वे में जवाब दिया। अपनी बात कहकर आयु वहां से जाने लगी। तभी आयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। आयान की इस हरकत पर आयु उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देख रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, अगर तुम्हारी तरह मैं भी जाकर आरव को तुम्हारी शिकायत लगाऊं तो? तुमने बहुत बुरी तरह से मुझे अंदर खींचा है, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, चुपचाप बैठो, आयान ने चिढ़कर जवाब दिया और आयु को पकड़कर जबरदस्ती चेयर पर बिठा दिया। वो उसके साथ पास वाली चेयर पर बैठा और सीरियस टोन में कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उसे पेशेंट से नहीं मिलोगी, मुझे वो पहले से ही ठीक नहीं लग रहा था। और कल, आयान बोल रहा था तभी आयु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, रियली आयान, तुम्हें अभी भी उस पेशेंट के बारे में बात करनी है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आरव ने भी इस बात को ज्यादा हवा नहीं दी, फिर तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती, आयान ने सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मेरी बहन और भाई के बाद में अगर कोई तीसरा इंसान मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है और जिसे मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता तो वो तुम हो, ये आज से नहीं है, ये बॉन्ड काफी सालों से है। मैं गलत नहीं कह रहा था आयु, उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें पता है कल रात को मेरी मॉम उससे मिलने आई थी, उन्होंने काफी देर तक एक दूसरे से बात की थी। आयान को फैज पर शक हो गया था, इसलिए उसने अपने खास वार्ड बॉय को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। उसी ने छवि और फैज की मीटिंग के बारे में बताया था। सारी बात सुनने के बाद आयु ने कहा, हाँ तो हो सकता है कि वो दोनों बिजनेस के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हों। मिस्टर खान को देखकर लगता है कि वो कोई जॉब करने वाले इंसान नहीं है, जरूर बिजनेसमैन होंगे, तभी इस छोटे से एक्सीडेंट के लिए भी हॉस्पिटल के VIP वार्ड में रूम बुक किया है। आयान आयु को अपनी मॉम के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि अभी आरव ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। छवि के बिजनेस कनेक्शंस आम नहीं होते थे, वो अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती थी। आयु अयान की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया और धीरे से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारे अलावा, बोलते हुए आयु रुक गई और फिर सिर हिलाकर कहा, या यूं कहूं कि तुमने कभी बनने ही नहीं दिया। वैसे तो मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था, पर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते थे। पता नहीं क्यों तुम्हें क्यों लगता था कि कोई भी लड़का इसलिए मुझसे फ्रेंडशिप कर रहा है ताकि मुझे डेट पर ले जा सके। जब आयु ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि अयान उसे हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहा है, तब अयान ने खुश होकर कहा, देखा मैं शुरू से ही सही था और हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम्हें ये बात समझ तो आई? काफी लड़के थे कॉलेज टाइम में तुम्हारे पीछे और मुझसे पूछो मैंने एक एक को कैसे हटाया था। अब जब तुम्हें समझ आ ही गया है तो प्लीज मिस्टर खान से दूर रहना। आयु अयान से बहस नहीं करना चाहती थी, साथ ही वो ये भी जानती थी कि अयान उसका कभी बुरा नहीं चाहेगा। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं मिस्टर खान से नहीं मिलने वाली, वैसे भी वो यहाँ सिर्फ 3 दिनों के लिए है। कल का दिन बीत गया, आज पूरा दिन मैं बिजी रहने वाली हूँ। रहा कल का दिन, तो तुम चाहो तो मुझे छुट्टी दे सकते हो, मुझे भी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा, बोलते हुए आयु ने जानबूझकर हस्बैंड शब्द पर जोर दिया।
आयु ने पहली बार आरव के साथ टाइम बिताने के लिए अयान से कहा था और उसके चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही थी। अयान ने आयु का हाथ पकड़कर कहा, मैंने कहा था ना मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ उनकी हरकतें थोड़ी अजीब होती हैं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें भी उनसे प्यार हो ही गया ना। आयु ने कभी डायरेक्टली आरव के सामने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अयान उसका फ्रेंड था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। देखो तो कोई ब्लश कर ला है, अयान ने हंसकर कहा, इस बात पर एक फ्रेंड्स हक तो बनता है, बोलते हुए अयान खड़ा हो गया। उसने आयु को भी हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसे गले लगा लिया। तुम्हारे भाई को पता चला तो ये तुम्हारी जिंदगी का मेरे साथ आखिरी हग होने वाला है, आयु ने जवाब दिया। वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम्हारे आसपास किसी को देख नहीं सकते और थोड़ा बहुत जेलस हो जाते हैं। तुम्हें नहीं पता, उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तभी वो यहाँ बार बार नहीं आते, वरना मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो वो तुम्हारे पीछे एक असिस्टेंट लगा देते जो तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम क्या कर रही हो उसका पूरा ध्यान रखता, अयान ने हंसकर कहा। वो आरव को अच्छे से जानता था। एक मोमेंट ऐसा भी था जब छवि अयान को उससे दूर ले गई थी, तब उसने अयान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। आयु अयान से अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत प्यार करते हो अपने भाई से, पहले कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त नहीं थी, हम हमारे रिश्ते को दुनिया के सामने रिवील नहीं करना चाहते, ये सब मॉम की वजह से है, अयान ने बताया। आयु ने महसूस किया अयान और आरव दोनों ही छवि सिंघानिया से नफरत करते थे, तो पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें छवि सिंघानिया की गलती रही होगी। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी मॉम ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम दोनों भाई उनसे नफरत करते हो? आयु ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने बहुत बार पहले भी अयान से इस बारे में पूछा था, लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया था और आज भी ऐसा ही हुआ। अब इस बारे में तुम्हें मैं नहीं, भाई ही बताएंगे, जब सही टाइम आएगा वो खुद बता देंगे। तुम ज्यादा टेंशन मत लो और चलो अब जाओ, जाकर सर्जरी की तैयारी करो। बात को टालने के लिए अयान ने आयु को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। ठीक है फिर ओटी में मिलते हैं, कहकर आयु बाहर जाने लगी। वो बाहर कदम रखती उससे पहले बाहर खड़ा आदमी तेज कदमों से चलकर दूसरी तरफ चला गया। वो फैज था जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसकी जगह अगर आरव होता तो एक बार के लिए उसे अयान और आयु को हक करते देखकर जलन नहीं होती। हालांकि वो बच्चों की तरह शिकायत जरूर करता, लेकिन फैज ने उन्हें ऐसे एक साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फैज गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं आप इस तरह किसी के गले नहीं लग सकती हैं, हमारे अलावा किसी और को आपको छूने का हक नहीं है डॉक्टर। और ये क्या कह रही थी आप? आपको उस आरव खुराना से प्यार हो गया है, आपको इसकी इजाजत नहीं है, हमें गुस्सा मत दिलाइएगा वरना इसकी सजा आपको भुगतनी होगी, जानबूझकर कभी आपको चोट नहीं देंगे, लेकिन आप गलती करेंगी तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आज आपने गलती की है तो उसकी सजा भी आपको मिलकर रहेगी, ताकि आगे से आप किसी भी गैर मर्द के करीब जाने से पहले 2 बार सोचे। फैज किसी साइको की तरह बात कर रहा था। उसके बर्ताव से साफ था कि वो कितना अग्रेसिव और मैनिपुलेटिव टाइप का इंसान था, और जिस लड़की से वो एक दिन पहले मिला था उसे पागलों की तरह चाहने लगा था। चाहना तो अलग बात है, अब वो आयु को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था और उससे अनजान आयु अपने कामों में लगी थी।